ओम शांति। बाबा हम सभी को काम देकर गए हैं, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। क्या क्या काम, कैसा देखना चाहते हैं बाबा हमें, हैं? टेंशन फ्री। और बताओ कैसा देखना चाहते हैं। कई उत्तर होते हैं बाबा के मुरलियों में, बाप समान देखना चाहते। और कैसा, एक पॉइंट नहीं आई जो इस सीजन की है, याद करो, सभी याद करो, जोर लगाओ जरा इधर, फिर मैं बताऊंगा। बाबा हर बच्चे को राजा देखना चाहते हैं। अब बताओ क्या देखना चाहते हैं? नहीं, कुछ और, स्वराज अधिकारी। याद है बाबा ने इस सीजन में कई बार कहा, मनजीत, स्वराज अधिकारी, मन के मालिक, मन अधिकार में चले। मन ही तो सब गड़बड़ करता है ना, मन बिल्कुल आज्ञा में चले। और एक बार बाबा ने कहा कि रोज दरबार लगाओगे, मुझसे पूछोगे कहाँ कहाँ गए आज बताओ, तो मन को रोज डर रहेगा मेरा मालिक आज रात को फिर पूछेगा। पूछते हैं ना जब बड़े, तो छोटों को डर लगने लगता आज फिर पूछा जाएगा। तो अपने मन को जैसे अपना बच्चा बना लो और उससे बात करो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ नहीं जाना है, ये अपनी ट्रेनिंग है मन को कंट्रोल करने की, क्योंकि मन को सही दिशा देना यही सबसे बड़ी तपस्या है। इस पर हजारों साल से सन्यासी तपस्वी भी काम करते आए, बहुत थोड़ों को सफलता मिली, बहुत थोड़ों को, क्योंकि मन बहुत तेज गति से भटक जाता है, पता ही नहीं चलता फट से गया। इसलिए रोज मन से पूछो रात को कहाँ गए थे आज, जैसे बच्चे से पूछते हैं ना, बच्चा बिगड़ रहा हो तो माँ को चिंता हो जाती है ना, हैं? भाई बच्चा बिगड़ रहा है, मन को बच्चा बना लो, ये बिगड़ रहा है, रोज पूछो कहाँ गए थे आज, क्यों गए मेरी आज्ञा के बिना। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, चमकती हुई मणि हूँ यहाँ। बहुत सुंदर शब्द हैं ये बाबा के, तुम चमकती हुई मणि हो। ये संकल्प करते ही हम अपने चमकते हुए स्वरूप को देखने लगेंगे, चमकती मणि जिसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं, ऐसी चमकती हुई मणि मैं हूँ। आज का वरदान किसी को याद है? संतुष्टता पर था, बोलो। तीन सर्टिफिकेट लेके क्या बनेंगे, आगे का भी तो बताओ। उच्च पद के अधिकारी, उच्च पद के अधिकारी, सफल संतुष्टता से। संतुष्टता हमारा एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, हमारा ही नहीं सारे संसार का। एक परिवार में जो बहुत साहूकार परिवार है, जन्म जन्म से जिनकी साहूकारी चलती आ रही है, ऐसे कई परिवार होते हैं ना, कई तो इसी जन्म में बनते हैं, एक साहूकार चलते आ रहे हैं कई जन्मों से, तीन है वो माँ बाप एक लड़का, तीनों की कभी नहीं बनती, कोई किसी से संतुष्ट नहीं, तीन ही है, घर बहुत बड़ा, बाग बगीचे सामने सुंदर एकदम खुला जैसे महल, लेकिन तीनों आपस में बात ही नहीं करते। कैसा लगता होगा उन्हें अपना जीवन, लड़का सुसाइड करने के लिए चला था तो उसका साथी उसे यहाँ ले आया था, रास्ते मिल गया, कहाँ जा रहे हो, उदास लगते हो, बताई सारी कहानी। उन्हें कहा अच्छा मरने से पहले एक बार ब्रह्मा कुमारियों को और देख लो फिर मरना, तो चलो सेंटर पे ले गया फिर यहाँ ले आया, तो उसका जीवन बदल गया। संतुष्ट संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है। एक दूसरे से संतुष्ट, अपने भाग्य से संतुष्ट, अपने पाठ से संतुष्ट, अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट, साथियों से संगठन में संतुष्ट, छोटी बात नहीं है या छोटी है? हमें इसे छोटा बनाना, छोटा माना सरल करना है। माताएं देखो, यहाँ एक कमरे में कितनी रहती हैं? ऊपर विशाल भवन में एक हॉल में कितनी रहती हैं? 15, किसी में 25, अब 22 रहती हैं, किसी में 10 रहती हैं। अब बताओ, एक दूसरे के साथ रह के संतुष्ट रह सकते हैं? कोई कैसे, कोई कैसे रह सकती है माताएं बताओ? एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे एडजस्ट करना है, दूसरों को मेरे से करना है ये नहीं, मुझे सबसे करना है। एक अंतर देखो आप, घर में जब आप हैं तो आप अधिकारी हैं, और यहाँ जब आप हैं तो क्या है? अधिकारी नहीं, सेवाधारी तो हैं पर अधिकारी नहीं, जैसे घर में है। घर में बच्चे ने कुछ किया, दरवाजा खुला छोड़ दिया रात को, आप उसे डांट सकती हो, और यहाँ किसी माता ने दरवाजा खोल दिया तो आप डांटेंगे, वो आपको डांट देंगे, फिर आप शायद रात सोएंगे नहीं। अंतर है ना दोनों स्थितियों में? दोनों स्थितियों में अंतर है। सुन लो बहन जी, फोन सुन लो, जाओ बाहर सुनो, बार बार आएगा आपका। तो एक दूसरे के साथ संतुष्ट रहना, इसमें भी मुझे सबसे एडजस्ट होकर चलना है। कोई बात करेंगे, कोई लाइट जला देंगे, संगठन में होगा ना, कोई देर से जाएंगे, कोई आवाज करते जाएंगे, कोई सोने में भी आवाज करेंगे, होता है ना ये सब, खरांटे ज्यादा आएंगे, क्या करें? सबके साथ मिलके रहना है ना। अगर डिस्टर्ब हो गए तो कहेंगे हमारे भाग में तो यहाँ भी शांति नहीं है, शांति के लिए आए थे मधुबन में कि दो मास सेवा करेंगे, शांत रहेंगे, हमारा तो भाग ही खराब है, ऐसों के साथ रहना पड़ा जो हमारी शांति खत्म कर दी। तो एडजस्ट करना है, शांति खुद को चाहिए, वो खुद को लेनी है, दूसरे अशांत करेंगे, खुद नहीं होना है। ऐसा जो विचार कर ले, ऐसी जो दृढ़ता अपने में ले आए, उनका जीवन सुखी, और जो ऐसा न करे वो सदा परेशान। संतुष्ट रहना, इसमें एक बहुत बड़ी बात थी आज के वरदान में, स्वयं भी सर्टिफिकेट देना है अपने को कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। बोलो अब, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य स्वयं को सर्टिफिकेट देगा ना, मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ। भले कोई व्यक्ति कितनी भी शिकायत करता हो दूसरों की, ये व्यक्ति ऐसे करता है, ये मुझे तंग करता है, इसने ऐसे किया है, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना है, अपने को संतुष्टता का सर्टिफिकेट देना है। जबरदस्ती तो नहीं ना कि भाई मैं तो अपने से संतुष्ट हूँ, लो सर्टिफिकेट लिख देता हूँ कागज पे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अंतरात्मा बिल्कुल स्वीकार करे कि भगवान को पाकर मैं आत्मा संतुष्ट हुई, जन्म जन्म जिसकी खोज थी उसको मिलकर मैं आत्मा संतुष्ट हुई, जन्म जन्म हम सत्य ज्ञान की तलाश में थे, सत्य ज्ञान को पाकर मैं आत्मा तृप्त हुई, बिल्कुल संतुष्टता हो जाए। और जब संतुष्ट आत्मा हो जाती है तो अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं, न कोई क्वेश्चन, न कोई कंप्लेंट। कंप्लेंट माना माताएं बताएं, बहने बताएं, हैं? फरियाद, फरियाद से भी दूसरा शब्द है शिकायतें। फरियाद एक दूसरी चीज होती है, कुछ मांगना जैसा, शिकायतें करना दूसरों की। तो जो संतुष्ट आत्माएं हैं उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। विचार कर लें सभी, चाहे इकट्ठे रहते हैं चाहे इकट्ठे सेवाएं करते हैं, जीवन में भी तो हमारे साथ होते हैं ना कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, थोड़े दूर हैं, लेकिन डिस्टर्ब करेंगे, उल्टी सुल्टी बात करेंगे, उनका हमसे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन बातें करेंगे वो हमारे लिए उल्टी सुल्टी। उसमें भी संतुष्ट रहना, कैसे, क्या संकल्प करेंगे, हैं? जो करेगा वो भरेगा, उनको ये क्या क्या भरेगा, पानी भरेगा या अनाज भरेगा? इस खेल में सबका अपना अपना पार्ट है, यहाँ सभी निर्दोष हैं। सबको पार्ट मिला हुआ है ना, वो प्ले कर रहे हैं ना, उन्हें परचिंतन करने का पार्ट मिला हुआ है। भाई कोई तो होंगे ऐसे एक्टर भी, या परचिंतन करने वाले एक्टरों की जरूरत नहीं है, जरूरत है। ड्रामा में भिन्नता होती है ना, लड़ने वाले एक्टरों की भी जरूरत है, नहीं तो मजा नहीं आएगा देखने वालों को, ठीक है ना। सीधा सीधा शांत शांत ड्रामा चलता हो तो मजा भी नहीं आएगा ना। तो वो सब एक्टर्स हैं, सब निर्दोष हैं, उनको तो वो भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है, वो सब निर्दोष हैं। अपने को ट्रेनिंग कर दें ऐसी, अपने को समझाएं, ठीक है, समझाएंगे ना। तो अपने को संतुष्ट करना सबसे बड़ी चीज ये है। जो आत्मा अपने को संतुष्ट कर सकती है वही दूसरों को भी संतुष्ट कर सकती है, चाहे अपने पुरुषार्थ की संतुष्टता की बात हो चाहे व्यवहार में संतुष्टता की बात हो। संतुष्ट, और सबसे बड़ी चीज है, हम कब संतुष्ट हो सकते हैं बोलो, हैं? नहीं भाई बोलो, बस यही एक रहस्य है। सर्व प्राप्तियां होने पर ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। हमें केवल पैसा मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं होगी, हमें अच्छा परिवार मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं होगी। जो कुछ हमने 84 जन्मों में खोया है वो फिर से प्राप्त हो तब संतुष्टि होगी। सारे खजाने हमें प्राप्त हों, ये जो हमारे सब सूक्ष्म खजाने हैं इनका स्थूल प्राप्तियों से नाता है। जैसे बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी भाई ध्यान दें, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। तो सूक्ष्म खजाने स्थूल खजानों को आकर्षित करेंगे, उसमें संकल्पों का खजाना, समय का खजाना। लौकिक में भी आप देखो, कोई व्यक्ति बिजनेस करता हो लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करता हो, उसका बिजनेस कैसा चलेगा, चलेगा? मान लो 8 घंटे व्यर्थ गपशप में घूमने फिरने में लगाता हो, दुकान ही न खोलता हो टाइम पे, तो चलेगा? तो समय बहुत बड़ा खजाना हो गया ना, चाहे समय का खजाना चाहे शक्तियों का खजाना। शक्तियों का खजाना देखो, जिसके पास यहाँ बहुत शक्तियां होंगी, 8 शक्तियों का तो सबको पता ही है ना, और भी शक्तियां हैं, जिसके पास यहाँ 8 शक्तियां होंगी, बहुत शक्तियां होंगी, उन्हें अनेक जन्म ताज मिलेगा, और जिनके सिर पे ताज आ जाए उन्हें प्राप्तियों की कमी होती है, वो तो मालिक हो गए, सब कुछ उनका है। तो ये हमारे सूक्ष्म खजाने स्थूल खजानों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हम आत्माएं तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक सर्व खजाने न मिले। एक है स्थूल रूप में संतुष्टता, कई आत्माएं, हम में से भी कई आत्माएं हैं, खाने पीने में वही जो मिला संतुष्ट हैं, सोने में जहां सोने को मिला संतुष्ट हैं, लौकिक में पैसा जितना है संतुष्ट हैं, थोड़े में काम चलाते हैं, ऐसे बहुत लोग हम देखते हैं। लेकिन हमारी संतुष्टता संपूर्ण रूप से अलौकिक है और ऊंचे लेवल की है। हम में से कोई कितना भी कहे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर जीवन में खुशी नहीं है तो आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी। खुशी का खजाना आत्मा को संतुष्ट करेगा। तो सभी ध्यान दें, हमें स्वयं को स्वयं संतुष्टता का सर्टिफिकेट देना है। आत्मा रियलाइज करे, बाबा से बात करे, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए। सभी बात करना अपने से, ये ट्रेनिंग है अपनी, अपने को संतुष्ट करने की। कई बार हम बाबा को बात करें, बाबा आपके सत्य ज्ञान को पाकर हम संतुष्ट हुए, आपने आकर हमें जन्म जन्म की भक्ति का फल दिया, हम संतुष्ट हुए, आपने आकर जन्म जन्म की हमारी प्यास बुझा दी, हम संतुष्ट हुए। तो आत्मा तृप्त होगी इस तरह। मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है, आज की मुरली में बहुत थी। माया ने तुम्हारा राज छीन लिया था और मैं आया हूँ खोया हुआ राज फिर से दिलाने के लिए। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये बात, कोई खोया हुआ राज दिला दे कितना उसका एहसान होता है। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ, किसी एक राजा का राज दूसरे ने छीन लिया लड़ाई करके, 10 साल 20 साल वो व्यक्ति जंगलों में रहा, किसी दूसरे राजा ने उसको मदद की, उस पे आक्रमण किया, उससे उसका राज वापिस दिलाया, वो व्यक्ति सदा के लिए उसका एहसान मंद हो गया। वो तो छोटे छोटे राज्यों की बात थी, बाबा हमें स्वर्ग की राजाई दिलाते हैं जो हमसे रावण ने छीन ली। तो हम इस बात पे चिंतन करें, संतुष्ट हों, हम अपने राज स्थापित कर रहे हैं। राज स्थापित करने के लिए मेहनत होगी या नहीं? राज स्थापित करने के लिए गाली खानी पड़ेगी या नहीं? बताओ माताओं, खानी पड़ेगी? महात्मा गांधी ने अपनी पूरी पार्टी के साथ भारत को स्वतंत्र करा, राज स्थापित किया अपना, कितने कष्ट सहे, डंडे कितने खाए, कईयों ने गोलियां खाई, कितनों की मृत्यु हुई, हजारों हजारों मर जाते थे, लाखों की संख्या हो गई होगी मरने वालों की, लेकिन खोया हुआ राज फिर से लिया। हम राज भी ले रहे हैं और अपनी प्रजा की पालना भी कर रहे हैं। दूसरों को संतुष्ट करना ये उनकी पालना है, ये दूसरा सब्जेक्ट। हम दूसरों को तब संतुष्ट कर सकते हैं जब उनको परख कर उन्हें क्या चाहिए वो देते रहें। एक बात हमेशा आती है मुरली में, आज भी आई शायद, दूसरों को रिगार्ड देना, स्लोगन में था ना, शायद वरदान में ही था, परिवार में एक दूसरे को रिगार्ड देना, इससे संतुष्टता बहुत होती है। रिगार्ड देना, हम रिगार्ड नहीं दे पाते, किसके कारण? किसके कारण? अहम, अहम के कारण मनुष्य दूसरे को सम्मान नहीं दे पाता। परंतु क्यों हम सम्मान दें सबको? क्यों? जबरदस्ती तो नहीं दिया जाता ना, पर एक कारण है। जो यहाँ बैठी सभी आत्माएं सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि ये सब आत्माएं जो ब्राह्मण परिवार है ये कौन है? हैं? बाबा के चुने हुए रतन और कौन है? देव कुल की महान आत्माएं जिनको मंदिरों में हम सम्मान देते आए, जिनकी पत्थर की मूर्तियों को हम सम्मान देते आए, जब वो चेतन में आ गए तो उन्हें सम्मान नहीं देते तो नाराज होंगे ना। भक्ति में भी दिखाया है कि जड़ मूर्तियों को सम्मान नहीं दिया तो नाराज होके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लोग समझते हैं भाई इनके घर में विघ्न आ रहे हैं, ये बीमार रहने लगे, कोई दिन की कुल देवी नाराज हो गई है। भक्ति में मान्यता है ना। तो जिनकी जड़ मूर्तियों को हम सम्मान देते आए, जब वो चेतन में हैं तो हम उन्हें सम्मान ही नहीं देते तो गलती हो गई ना। क्योंकि सब महान आत्माएं, ये परिवार ही महान आत्माओं का है। जैसा परिवार हमारा है ऐसा किसी का होगा? सोचो, यहाँ मधुबन में हम सब रहते हैं, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई पान नहीं खा रहा है, सबको अपने जीवन को बदलने की इच्छा है, सब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं, चाहे कोई थोड़ा भी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, उसको कुछ करने की तमन्ना है। सभी सेवाओं में लगे हुए हैं, सभी ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, सभी ने पवित्र जीवन अपना लिया है, संसार में ऐसी आत्माएं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। सोचो सभी है या नहीं बात? ठीक, एक भी पवित्र आत्मा आप सारे मुंबई में जहाँ की करोड़ों जनसंख्या हो गई है ढूंढो, मिलेंगे? तो हम सब आत्माएं महान है ना, देव कुल की महान आत्माओं का ये परिवार है। तो एक दूसरे को सम्मान देने से आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं। जो राजा हैं, हम में से जो राजा हैं, असली राजा, उनको एक इच्छा रहती है, मैं सबको संतुष्ट करूं। एक राजा अपनी प्रजा को संतुष्ट करेगा ही, तब प्रजा उसको राजा स्वीकार करेगी, नहीं तो राजा स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ सूक्ष्म गति है संगम युग पर, जैसे वहाँ वोट देते हैं, जिसकी ज्यादा वोट हो गई वो चुन लिया जाता है। हमारे यहाँ ये बाबा ने बताई हुई बात, जो जितनी ज्यादा आत्माओं के दिल पर राज करते हैं, जिसे बहुत आत्माएं अपना राजा स्वीकार करेंगी, यहाँ राजा वो बनेगा। यहाँ जबरदस्ती नहीं बन सकता कोई कि मैं सीट पर हूँ, राजा मैं हूँ, यहाँ वो चलता नहीं, स्थूल यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो जो बहुत आत्माओं के दिल पर राज करेंगे वो बहुत आत्माओं के राजा बन जाएंगे वहाँ। तो हमें संतुष्ट करने की पालना करनी है। परिवारों में भी आप सभी माताएं भाई जिनके परिवार हैं, वो अपने परिवार में सबको संतुष्ट करने का लक्ष्य बनाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा कहा करते थे, मुझे याद है बाबा की एक बात, बाबा जब साकार में थे तो सर्दी का समय था, तो एक भाई रहता था यहाँ, छोटा, सबसे छोटी आयु का था वो, तो ठंड बहुत होती थी यहाँ उन दिनों, तो उसको स्वेटर की जरूरत पड़ी, उसने स्वेटर मांगा, उसको दिया नहीं, तो वो रोने लगा, रोता रोता बाबा के पास पहुंचा, छोटा था ना, मुश्किल से 12-13 साल का था वो, रोता रोता बाबा के पास पहुंचा। बाबा तो बाप था ना, आज बाबा की उस फीलिंग को लोग नहीं जानते, बाबा तो ऐसा था ना जैसे घर में बाप होता है। हाँ भाई, बच्चा रो रहा हो, क्या बात हुई? जैसे बाप माँ होते हैं। तो बाबा मुझे स्वेटर नहीं दिया उसने, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो बाबा ने उसको बुला के स्वेटर दिलाया, लेकिन मुरली चलाई। वो बात मुझे याद रहती है। बाबा ने कहा, बच्चे खाने पीने में, रहने सहने कपड़ों में ज्यादा खर्च नहीं होता, इसलिए किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। और देखिए आप एक सूक्ष्म गति ध्यान रखें, जो व्यक्ति दूसरों को संतुष्ट करेगा उसके पास बहुत आएगा। घरों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, माँ बाप अपने बच्चों को संतुष्ट करेंगे तो उनके पास पैसा बहुत आएगा, और जो नाराज करेंगे असंतुष्ट रखेंगे उनके पास उतना ही कम आएगा। क्यों? मान लो आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 तो किसी के में होते नहीं पर मान लो 10 हैं, और आप 10 के 10 को संतुष्ट करते हैं तो उनकी खुशी, उनकी दुआएं हैं, उनका आपस में जो प्यार मिलेगा ना, उससे घर का माहौल ऐसा आकर्षक होगा जो धन को आकर्षित करेगा। लक्ष्मी वहीं आती है जिस घर में खुशी और प्रेम का वातावरण हो, ये सबको याद रखना है। और लक्ष्मी वहाँ से रूठ कर चली जाती है जिस घर में लड़ाई झगड़ा घृणा नफरत हो। इसलिए संतुष्ट करना संपन्न बनने का भी साधन है, सभी याद रखेंगे इसको, अपने परिवारों में भी एक दूसरे को संतुष्ट करो। मान लो किसी को एक 500 रुपए की चीज चाहती है, आजकल तो 500 रुपए थोड़े ही हो गए ना, महंगाई है, और आप उसे नहीं दे रहे हैं, उसको नाराजगी हो रही या उसको कठिनाई हो रही है या उसको असंतोष बढ़ रहा है, तो उसके वाइब्रेशंस आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और आप उसको 500 रुपए की चीज दे देते हैं तो उसकी संतुष्टता न केवल आपको सुख देगी लेकिन आपकी धन में भी वृद्धि करेगी, संपन्नता लाएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए एक दूसरे को संतुष्ट करें। और हम सब जो यज्ञ में हैं, उनके पास माल किसका है? सारा बाबा का या हमारा अपना? बाबा का है ना, तो हम सबको संतुष्ट करें। हमें इकोनॉमी करनी इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को कुछ दे ही नहीं। एक बार की बात है, बहुत साल पहले की बात है, 40 साल पहले की होगी, एक भाई था, उसके पास बिजली का डिपार्टमेंट था, तब बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं होते थे, दिया हुआ था भाई बल्ब किसी का फ्यूज हो जाए उसको देना है। एक भाई आया, मुझे याद है हम सब स्नान कर रहे थे सवेरे, एक भाई आया, उसको कहा भाई मेरा बल्ब फ्यूज हो गया है, मेरे को एक बल्ब दे दो। देने वाले ने उसको डांट दिया, तुम घड़ी घड़ी बल्ब फ्यूज करते हो जैसे वो फ्यूज करता हो, बल्ब हाथ से तो फ्यूज नहीं किया जाता ना, और उसको डांट के भेज दिया। वो बेचारा नाराज सा होके चला गया, क्या करेगा भाई नहीं देता ये भाई मेरा फ्रेंड था। मैंने उसको थोड़ी देर के बाद कहा, मुझे ख्याल हुआ उन दिनों बल्ब बहुत सस्ता था, आज तो मुझे पता नहीं कितने का है, बहुत सस्ते होते थे तब, 125 रुपए से भी कम था शायद। तो मैंने उसे कहा कि यदि तुम, मैंने तुम तो उसको नहीं कहा, मैंने कहा यदि हम लोग भगवान के खजाने से भी दूसरों को सुख नहीं दे पाए तो जब हमारा अपना खजाना होगा तब क्या करेंगे भाई? तब तो हम दूसरों का भी छीन लेंगे। उसको समझ में आ गई, और मैं देखा तब से उसके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। देखिए खजाना भगवान का और पुण्य हमें मिल रहा है, इससे सस्ता सौदा कहीं होगा? कितनी बात सोचने की है, गुह्यता में जाने की है कि भगवान के खजाने से मान लो कोई भोजन खिला रहा है, अब भोजन बाबा का, खिलाने वाले का अपना कुछ नहीं है, लेकिन वो तंग करता है खाना देने में तो क्या होगा? सोचो, एक माता की कहानी है, सच्ची कहानी अभी की, वो भोजन खिलाने में दूसरों को बहुत तंग करती, अति तंग, अति कोई ठेपला लेने आ गया 2 की बजाय तीसरा तो वो बोलेगी जरूर, कई तो ठेपला उसके ऊपर फेंक के चले जाते थे। सच्ची कहानी है ये, मधुबन की नहीं है पर है यहीं की, मैं आगे नहीं बताऊंगा। उसकी वो दुर्गति हुई है, अभी शरीर छोड़ा उसने पीछे नजदीक में, उसकी दुर्गति देखकर सब तो खुश होते थे, बहुत बहुत खुश होते थे कि अब ठीक हुआ, प्रभु जी ने न्याय किया। क्योंकि उसने बहुतों को बहुतों की जैसे इंसल्ट की। अब देखिए भोजन उसका था ही नहीं, भोजन प्रभु के यज्ञ का, उसको केवल देना है। कोई अगर दाल दोबारा लेने आ गया तो वो आंख दिखाती थी, दोबारा नहीं मिलेगी, लोग कटोरी उसके ऊपर फेंक के चले जाते थे। बोलो, ऐसी आत्माओं की दुर्गति नहीं तो क्या श्रेष्ठ गति होगी? हुई उसकी दुर्गति। पिछले 3 साल में उसको सबने देखा व्हील चेयर पर, पागल, न मरे न जिंदी। और सब देखने वाले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़े आनंदित होते थे कि वाह प्रभु, अब तुमने ठीक काम किया। तो देखो ऐसी आत्मा की जन्म जन्म की गति क्या होगी। तो माल भगवान का और परेशान हम, कितनी समझदारी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लुटाएंगे, पर ये बाबा ने यज्ञ रचा है दूसरों को सुख देने के लिए। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, हम सब तो इसमें निमित्त हैं। न हम कुछ यज्ञ में लाए, मैं सोचता हूँ मैं क्या लाया यज्ञ में, खाली हाथ आए थे, बहुत माल इकट्ठा हो गया हमारे पास भी, हम खाली आए थे। जब जाएंगे तो ये स्थूल चीजें भी हमारे साथ नहीं चलेंगी, तो क्यों न सुखों का लेन देन करें हम, जो हमें अधिकार मिले हैं उससे जितने ज्यादा सुख दूसरों को दिए जा सके वो हमारा पुण्य होगा ना, वो हमारी कमाई होगी। देखिए कितना मैं सोचता हूँ हमारा भाग्य कितना अच्छा है, भगवान ने हमें अपने घर में रखा, बहुत सारा माल खजाना हमें दिया, अधिकार दिए, का इससे तुम सुख दो सभी को और हम सुख भी न दे पाए तो हम जैसा बुद्धिमान कौन होगा दुनिया में, होगा? लोग भी हंसेंगे। इसलिए दूसरों को संतुष्ट करना, इसको हम अपना लक्ष्य बना लें। तीसरी बात थी बाबा को संतुष्ट करना। अब लोग सोचते हैं बाबा भी असंतुष्ट होता है क्या? बाबा संतुष्ट नहीं होता, लेकिन किसी को बाबा टीचर के रूप में सर्टिफिकेट तो देगा ना, ये फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फेलियर, सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ना, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, परम शिक्षक है, परम सदगुरु भी है। तो भगवान किस पे राजी होता है? सच्चाई, केवल सच बोलने पर नहीं। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, ब्राह्मण संसार में सच बोलते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि दूसरे सच क्यों नहीं बोलते? देखे आपने ऐसे लोग, सच बोलते हैं तो बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, सारा संसार झूठा है, ये भी ऐसे हैं, ये भी खराब, ये भी खराब। तो एक सच्चाई गुण, लेकिन उसके साथ हजार अवगुण इकट्ठे कर लिए होते हैं। केवल इसको सच्चाई नहीं कहते, सत्य मार्ग पर चलना, सच्चे दिल से सेवाएं करना, जो हमारा सत्य स्वरूप है आत्मा का, उसमें स्थित होना, बाबा के सत्य स्वरूप को पहचानना, सच्चे कर्म करना, यह है संपूर्ण सच्चाई। केवल सच बोल दिया और परेशान रहे कि मुझे झूठ बोलने वालों से बड़ी नफरत है। बहुत लोग बोलते हैं बड़े नशे से, मेरे आगे कोई झूठ बोले तो मेरे से सहन नहीं होता। तो सहनशीलता अपनी गंवा दी तो सच्चाई का बल रहा? सत्यता में बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने देखो कितने अच्छे अच्छे महावाक्य उच्चारण किए हैं, सत्यता के साथ सभ्यता भी हो। सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते, बादल बिखरेंगे सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा। सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सत्य में बल है, सत्य की विजय है, जिधर सत्य है उधर बाप है। तो सत्य की डेफिनेशन विशाल है ना, केवल सच बोलना नहीं। सच बोलने वाले रूखे हो जाते हैं कभी कभी जीवन में, सीरियस हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं। सत्य माना सॉफ्ट, प्योरिटी ही सत्यता है। हम सब ने प्योरिटी अपना ली है, सत्यता के मार्ग पे कदम रख दिया है, वो हमारा सत्य स्वरूप है। तो हम बाबा के आगे जैसे हैं सच्चे बिल्कुल क्लियर हों। ये नहीं कि बाबा तो हमें जानता ही है, हम कैसे हैं सत्य, बाबा के सामने सत्य, बाबा से तो वैसे भी कुछ छुपता नहीं है। तो हम अपने सत्य स्वरूप को बढ़ाते चले। हम सबको बहुत बड़ा पुण्य मिला है। कौन सा पुण्य कर रही हैं सब माताएं? माताएं बोलेंगी, बोलो कौन सा पुण्य आप सब कर रहे हैं? कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, यज्ञ सेवा, इसको भूलना नहीं है। जो सच्चे दिल से यज्ञ सेवा कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता जा रहा है, पुण्य बनता जा रहा है। भगवान ने यज्ञ रचकर, गीता में महावाक्य है, भगवान ने यज्ञ, ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को दिया और कहा, हे वत्स, तुम इस यज्ञ से इस यज्ञ की वृद्धि करो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, देवता प्रसन्न होकर तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। ये हम सब की बात है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने यज्ञ रच के हम सब के हाथ में सौंप दिया कि देवकुल की जो आत्माएं आ रही हैं उनको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न होकर तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे, यज्ञ की वृद्धि करो। तो हम सेवा करके यज्ञ की वृद्धि कर रहे हैं ना, सब बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। इसलिए सेवा सच्चे दिल से हो, आनाकानी से नहीं। बहुतों के अनुभव हैं, बीमार हैं। देखिए, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, बीमार हैं सो गए, भाई अब हम सेवा पे नहीं आएंगे, हम बीमार हैं। दूसरे मिलेंगे जो ये सोचते हैं सेवा से ही बीमारी ठीक हो जाएगी, चलो बुखार है कोई बात नहीं, सब्जी काटेंगे, यहाँ अकेले पड़े पड़े क्या करेंगे, सबके साथ मिले जुलेंगे, बात करेंगे, आधा बुखार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और सेवा उनकी बीमारी को समाप्त कर देती है। ये अनुभव है मेरे बहुत हैं। कई बीमारी आई, मुझे पता नहीं चला, गई सेवा से खत्म हो गई। सेवा में बहुत बड़ा बल भी है, सत्य में भी ऐसे ही। कई लोग ऐसा सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, यज्ञ में भी सोचते हैं कि सत्य की सुनवाई नहीं होती। जो झूठे लोग हैं वो तेज तराक होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, वो दूसरों के दिल पे चढ़ जाते हैं इधर उधर की बात करके। और जो सच्चे हैं वो ईमानदार होते हैं, वो शांत होते हैं, कभी कभी उनकी हार होती है। तो लोग ऐसा कहने लगते हैं, सत्य की जीत नहीं होती, सत्य की तो हार हो रही है। पर हमें याद रखना चाहिए, सत्य की हार क्षणिक है, सत्य की जीत होगी ही, असत्य की जीत भी क्षणिक है। एक व्यक्ति झूठ बोलकर मान लो बड़ों के समीप पहुंच जाए तो जल्दी ही उसकी असत्य का सबको पता चलता ही है, क्योंकि यहाँ बाबा है, सदा नहीं चलेगा। इसलिए सत्य की सदा हार नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत हार हो भी जाए तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, सत्य में शक्ति है और जिधर सत्य है उधर भगवान है। हार हो भी गई तो कोई बात नहीं, ये क्षणिक है, यहाँ की बात है। ये हमारे साथ बाबा है, सत्य में बल है, हमें बल चाहिए। हार जीत तो जीवन में होती रहती है, टीम भी खेलती है, कभी हार कभी जीत। तो हम सभी संतुष्टता के तीनों सर्टिफिकेट लेंगे और स्वराज अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। चलो अभी चमकती हुई मणि बनकर बैठेंगे यहाँ, और मणि में चमक भर रहा है बाबा, जैसे बाबा की लाइट मणि में आ रही है और मणि की चमक बढ़ती जा रही है, ऐसा अभ्यास करेंगे। प्रभु का
Thank you.